والله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो जैसा कि आप में से अक्सर को मालूम होगा कि पिछली क्लास जो हुई थी एक हफ्ता पहले बुध के दिन, तो उसमें हमने अखलाक व आदात नबविया यानी शमाइल पढ़ करके मुकम्मल किए थे तसहील बहश्ती जेवर में से। नबी अलैहिस्सलाम के जो अखलाक थे उनके बारे में हमने इल्म हासिल करने की एक कोशिश करी। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में इखलास पैदा फरमाए और इसको अपनी रहमत से कबूल फरमाए। और इसका जो फ़ायदा है, इसका जो असर है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए कि हम वाकई अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हमीदा से मुजय्यन करने की मेहनत में लग जाएं और इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। तो अखलाक व आदात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो तस्हीह बहश्ती ज़ेवर ही में अगला टॉपिक है वो है किताबु सुलूक वल एहसान। किताबु सुलूक वल एहसान, अब हमने इसको पढ़ने का इरादा किया है और अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास जो है वो हम शुरू भी कर रहे हैं। आपने उम्मीद है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसका नोटिस भी पढ़ लिया होगा और एक फ्लायर भी बनाया है तो वो भी देख लिया होगा। किताबु सुलूक वल एहसान पढ़ने से पहले बल्कि जिसकी के ज़ेरी हेडिंग है अखलाके ज़मीमा और उनका इलाज, ठीक है। तो किसी बात को शुरू करने से पहले उसकी पहले तो तारीफ हो जानी चाहिए ना, इसकी डेफिनेशन हो जानी चाहिए कि ये है क्या। तो यानी वो टर्म डिफाइन हो जानी चाहिए जिस टर्म को हम आगे जा करके पढ़ रहे हैं तफसील से। तो किताब क्या चीज़ होती है? लिखी हुई चीज़ है ना, मकतूब, ठीक है। मकतूब एक्चुअली वर्ड है जो चीज लिखी हुई हो, कतबा यक्तुबु, ठीक है। और उसके लिए अरबी जुबान के अंदर ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे मरसूल, मरसूल का लफ्ज है ना, ये असल लफ्ज है उस शख्स के लिए जिसको कि भेजा गया हो किसी मैसेज के साथ, किसी रिसाले के साथ, ठीक है। तो अरबी ग्रामर के हिसाब से उसके लिए लफ्ज बनता है मरसूल। लेकिन इस्तेमाल क्या होता है, आप सबको पता है कि रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, रसूल, ठीक है। उसी तरीके से किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है मकतूब के लिए, तो लिखी हुई चीज। अब जो है ये क्या क्या लिखा हुआ हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आज, वो है असुलूक। सुलूक का लफ्ज जो है ये यानी चलने से रास्ता जो चला जाता है ना, सला का या सुलूकू, ठीक है। तो जिस रास्ते के ऊपर चला जाता है ना उसको सुलूक कहते हैं, ठीक है। और चलने वाले को सालिक कहते हैं, अगर मर्द है तो सालिक कहते हैं और अगर औरत है तो उसको सालिकाह कहते हैं, सालिकतुन, जिसको सालिकाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुलूक जो है वो चलने के रास्ते को। अब चलने का रास्ता क्या, ठीक है, कौन सा वाला चलने का रास्ता? क्या घर से मार्केट तक वाला चलने का रास्ता, ठीक है, नहीं। बल्कि यहाँ पर किस रास्ते की बात हो रही है? यहाँ पर चले आप में से कोई बताए कि कौन से वाले रास्ते की बात हो रही है जिस पर के चल करके मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, मार्केट तक पहुंचना चाह रहे हैं, पार्क तक पहुंचना चाह रहे हैं, या किसी रिश्तेदार के घर पहुंचना चाह रहे हैं, या किस तरह पहुंचना चाह रहे हैं? नहीं, मंजिल, मंजिल बताएं। दीन का रास्ता तो आपने रास्ते का नाम बता दिया ना, या रास्ते की आपने डिस्क्रिप्शन बता दी, मंजिल क्या है, ठीक है। अल्लाह, ठीक है, अल्लाह तक पहुंचना चाह रहे हैं, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला रास्ता जिससे कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, उस रास्ते के लिए सुलूक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी रास्ते के लिए कुरान मजीद के अंदर सुलूक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कुरान मजीद के अंदर इसके लिए इस्तेमाल होता है सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा और इस्तकामत वाला रास्ता, पक्का रास्ता, ठीक है। तो किताबुस सुलूक जो है उसके अंदर इसी रास्ते के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी इसी रास्ते के बारे में बताया जाता है कि भाई ये रास्ता क्या है और इस रास्ते को जो है वो कैसे तय किया जाता है। अच्छा, अल एहसान, एहसान के लफ्ज का क्या मतलब है? एहसान की तारीफ तो बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दी, ठीक है, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफा आपसे वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने जो है वो एक खास तरीके से आपसे वसल्लम के साथ घुटने से घुटना मिला करके बैठ गए और पूछना शुरू कर दिया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया आम के, है ना, कि वो यानी कलमे की शहादत देना और जो है वो नमाज पढ़ना और रोजा रखना और जकात देना और हज करना, ये इस्लाम है, ठीक है। फिर पूछा मल ईमान, ईमान क्या है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया भाई अल्लाह पर ईमान लेकर के आना, रसूलों पर ईमान लेकर के आना, किताबों पर ईमान लेकर के आना। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है, ठीक है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि अन तअबुदल्लाह कअन्नहु तरा, कि एहसान ये है जैसे कि तू के तू अल्लाह की इबादत करे जैसे कि तू उसको देख रहा है, ऐसे अल्लाह ताला की इबादत करे। हालांकि अल्लाह को देखना तो मुमकिन ही नहीं है, जन्नत में जाकर के ईमान वाले अल्लाह को देख सकेंगे, वरना उससे पहले तो किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, ठीक है, यानी अल्लाह की के सामने खड़ा हुआ है और अल्लाह तुझे नजर आ रहा है, ऐसे इबादत कर अल्लाह ताला की। वो इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, और अगर तू उसको नहीं देख रहा तो वो तो तुझे देख ही रहा है। तो ये कैफियत हो इंसान के अंदर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है, अगर अल्लाह तुझे, अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा, इतनी कैफियत तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो कम से कम इतनी कैफियत तो हो ना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ठीक है। तो ऐसी कैफियत का हासिल हो जाना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। ये मेहनत कौन सी मेहनत है? सुलूक वाली मेहनत। सुलूक के रास्ते के ऊपर जब कोई चलता है ना, तो उसको एहसान वाली कैफियत हासिल हो जाती है। सुलूक के रास्ते पर जो चलता है और आगे भी बढ़ता है, चलता है का मतलब खाली नहीं कि बस एक कदम चला और फिर बैठ गया, ठीक है, बल्कि आगे भी बढ़ता रहता है, तो उसको ये वाली कैफियत हासिल होनी शुरू हो जाती है। पहले थोड़ी सी हासिल होती है, फिर और हासिल होती है, फिर और हासिल होती है, जैसे जैसे मंजिल के करीब होता जाता है वैसे वैसे ये कैफियत उसके अंदर बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो किताब सुलूक वल एहसान, जिस किताब के अंदर हम सुलूक के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये रास्ता क्या है, उसको कैसे तय करना है, और एहसान यानी इस कैफियत को हासिल करने की हम इल्म हासिल कर रहे होते हैं कि ये कैफियत क्या है, कैफियत कैसे हासिल होगी। तो किसी को कोई सवाल है इस बारे में तो आप पूछ लीजिए, जब तक कि बेल खुद ब खुद बजनी शुरू हो गई है, सुभान अल्लाह, उसको बंद करके आते हैं। जी, तो किसी को कोई सवाल नहीं है किताबु सुलूक वल एहसान की तारीफ के बारे में, ठीक है। तो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो इसकी जो जेली हेडिंग है उसको भी तो फिर कुछ डाइसेक्ट करना होगा ना। तो इसकी जेली हेडिंग यानी सब हेडिंग इसकी जो है वो है इखलाक जमीमा, अखलाक जमीमा, असल लफ्ज है अखलाक, उर्दू में हम उसको इखलाक बोल देते हैं, ठीक है, तो अखलाक दमीमा, अखलाक का जो लफ्ज है वो खुलुक से निकला, खुलुक मतलब मैनर्स, तौर
ओके
तरीके। नहीं, एक मिनट है जी, ठीक है, तो अखलाक जो है वो खुलूक से निकला, खुलूक का मतलब तौर तरीके, अच्छे तौर तरीके और मैनर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और जमीमा का जो लफ्ज है वो जम से निकला, जम जम कहते हैं किसी की बुराई करना, बुराई करना, ठीक है, तो जमीमा यानी बुरे, बुरे अखलाक और उनका इलाज। तो बुरे अखलाक का इलाज का मतलब क्या कि भाई किसी के अंदर अगर बुरे अखलाक हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि ये बुरे अखलाक जो है वो बीमारी है, इलाज तो बीमारी का किया जाता है ना, ठीक है। आप किसी किसी को पालते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने बच्चे को पालती हैं माशाल्लाह, है ना, आप जो है वो किसी पौधे को पालती हैं या आप जो है वो किसी और चीज को पालती हैं, तो क्या बीमारी को भी पाला जाता है? नहीं, बीमारी के लिए पालने का लफ्ज इस्तेमाल करेंगी, पाला तो उसको जाता है कि जिसको कि हमें बड़ा करना होता है, जिसकी कि हमने परवरिश करनी होती है, ठीक है ना, मजबूत बनाना होता है, जैसे बच्चों को बड़ा करना, मजबूत करना, परवरिश करना, सिखाना। भाई अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी आप परवरिश तो नहीं करते ना, उसकी तो आप, उसका तो आपने इलाज करना होता है ताकि वो दूर हो जाए या कम से कम कम हो जाए, ठीक है। ट्यूमर होता है तो ट्यूमर को जो है या तो आप रेडियो एक्टिविटी के जरिए से या जो है वो कीमोथेरेपी के जरिए से ट्यूमर को जो है वो रिड्यूस करते हैं, या आप जो है वो बिल्कुल क्या करते हैं, सर्जरी के जरिए से जहां पर ट्यूमर होता है ना उस ट्यूमर को बिल्कुल काट के अलग ही कर देते हैं, ठीक है ना, सर्जरी के जरिए से। बीमारी का तो यही काम कर, बीमारी के साथ तो यही करना होता है, या तो आप उसको कम करें, छोटा करें, या उसको जो है वो आप काट के बाहर फेंकें, ठीक है। तो इसी को इलाज कहते हैं, इलाज के ये दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। तो अखलाक दमीमा जो है ना ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करना पड़ता है। और आपको पता ये भी होगा कि अगर बीमारी का इलाज ना किया जाए तो फिर बीमारी क्या करती है, ये बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जो है ना फिर ये मोहलिक हो जाती है। मोहलिक, मोहलिक कहते हैं हलाक कर देने वाली, ठीक है। तो अखलाक दमीमा भी बीमारी है और ये अगर बगैर इलाज के छोड़ दिए जाएं तो ये बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते ना इंसान को ये मुआशरती तौर पर भी हलाक कर देते हैं, ठीक है, नफसानी तौर पर भी हलाक कर देते हैं और ईमानी तौर पर भी हलाक कर देते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आपके पास कोई पेन पेंसिल वगैरह हो और नोटबुक पर या बुक पर, अगर आपके सामने बुक मौजूद है तो बुक के ऊपर ही कुछ नोट्स लिख लें, इस तरह के कुछ कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लें साथ साथ, वरना रात गई, बात गई, क्लास गई और बात उड़ गई सारी की सारी जहन से, ऐसा हो जाएगा फिर आपके साथ। अच्छा, अब जो है ना वो एक सवाल पैदा होता है कि अखलाक जमीमा और उनका इलाज, ठीक है, ये तो है पहला टॉपिक, पहला सब टॉपिक, सही है, किताबु सुलूक वल एहसान के अंदर पहला सब टॉपिक है अखलाक जमीमा और उनका इलाज। और दूसरा सब टॉपिक है जो कि चंद पेजेस के बाद है, वो है अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके, अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके, ये अगला टॉपिक है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अखलाक जमीमा और उनका इलाज पहले और अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके बाद में, यानी अच्छी चीज जो है ना वो बाद में है और बुरी चीज जो है वो उसका जिक्र पहले है, ठीक है। तो भाई ये तो नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है, ये तो नेगेटिव सोच हो गई, मनफी सोच हो गई कि आप बुरी चीज का तذکرہ पहले कर रहे हैं और अच्छी चीज का तذکرہ बाद में कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया हकीमुल उम्मत हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ऐसा क्यों किया, इसका कोई अगर आपके से जवाब, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा क्यों किया कि मनफी चीज पहले जिक्र कर रहे हैं और मुस्बत चीज जो है वो बाद में जिक्र कर रहे हैं, यानी गोया कि नेगेटिव थिंकिंग, उसकी वजह कोई बताएगा? जी बीमारी का पता हो तो इलाज होगा। सवाल तो बिल्कुल कुछ और है, आप तो पता नहीं क्या जवाब दे रही हैं। सवाल समझी कि पहले मनफी चीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बाद में मुस्बत चीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं। जी, इन्होंने जवाब दिया डायरेक्ट मैसेज में, आप बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि पहले जख्म से गंदा मवाद निकालते हैं, फिर मरहम लगाते हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा जवाब है। जख्म से जो है ना, वो जो गंदा मवाद है वो पहले बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मरहम लगाते हैं, दवाई लगाते हैं। ठीक है, बात तो आपकी उसूलन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी क्लियरली ये अप्लाई नहीं हो रही, ये अल्फाज इतने क्लियरली अप्लाई नहीं हो रहे। तो किसी और का जवाब पढ़ते हैं कि बुरी चीज की सफाई के बाद ही अच्छी चीज डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि एक ही बर्तन है आपके पास, ये नहीं कि आपके पास दो बर्तन है, एक में बुरी चीज पड़ी हुई है तो आपने दूसरे बर्तन में अच्छी चीज डाल दी। आपके पास एक ही बर्तन है, उसी में आपने जो है वो चीज रखनी है, तो अगर उसमें पहले से बुरी चीज पड़ी हुई है तो आप अच्छी चीज कैसे डालेंगे उसके अंदर। पहले बुरी चीज को निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अच्छी चीज डाल सकते हैं ना। ठीक है, तो भाई हमारे पास तो एक ही बर्तन है, हमारा कितने दिल है, हमारे पास एक दिल है या दो दिल है, एक ही दिल है ना हमारे पास। ठीक है, तो उस एक दिन में से गंदगी को बाहर निकालेंगे तब अच्छी चीज अंदर आएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा एप्लीकेबल या रेलेवेंट अल्फाज इस्तेमाल किया आपने। जब बुराई बुराइयां निकल जाएं तो अच्छाइयां खुद ही हो जाएंगी। नहीं, खुद ही तो नहीं हो जाती, बुराइयां निकालने से अच्छाइयां खुद ही नहीं आ जाती, अच्छाइयों को भी सीखना पड़ता है। ठीक है, खुद ब खुद नहीं आ जाती। हाँ, इतना जरूर हो जाता है कि एक जगह क्रिएट हो जाती है अच्छाइयों के लिए, एक जगह साफ हो जाती है। ठीक है, माशाल्लाह, एक और जवाब आया, पहले नफी फिर असबात, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा दीन यही सिखाता है। बेहतरीन, माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा जवाब है कि हमारे दीन का यही मिजाज है, हमारा परवरदिगार यही सिखाता है कि पहले आप गंदी की नफी करें, शिर्क की नफी करें, फिर उसके बाद अल्लाह का इस बात करें, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के काबिल नहीं है, फिर इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। ठीक है, अच्छा, किसी ने लिखा चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, माशाल्लाह, ये भी बड़ा एक आपने आप दूर की लेकर के आई है, लेकिन है बड़ी अच्छी। ठीक है, कि जो अखलाक हमीदा है ना, इनकी सही अप्रिसिएशन, इनकी सही कदर और वक़्त उस वक्त तक पैदा नहीं होगी जब तक के अखलाक जमीमा समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगरचे के ये एक स्ट्रेच करके जरा है, लेकिन यानी ये वन ऑफ द रीजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसकी वजह से हजरत थानवी ने अब्दुल्ला ने पहले अखलाक जमीमा का जिक्र किया, ताकि आपको गंदगी का एहसास हो जाए कि गंदी चीजें क्या होती हैं, फिर जब अच्छी चीज सामने आएगी ना तो उसकी कदर पैदा होगी, उसकी सही मानों में उसकी समझ पैदा होगी, इज्जत पैदा होगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा अच्छा जवाब है, मतलब जवाबों में से। फिर उसके बाद ये जो नफी और इस्बात वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम थोड़े अल्फाज से आपको दोबारा बता देते हैं, पहले भी कई दफा बात हो चुकी है कि हमारे दीन का मिजाज जो है ना वो है कि दफ़े मुजरत पहले है। मुजरत कहते हैं जरर पहुंचाने वाली चीजें, तो जरर पहुंचाने वाली चीजों को दूर करना ये पहले करना होता है। हमारे दीन सिखाता है कि पहले दफे मुजरत करो, ठीक है, और उसके बाद फिर जल्बे मनफियात। ठीक है, जल्बे मनफात, ठीक है, जो नफा पहुंचाने वाली चीजें उनको मनफात कहते हैं। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका खुदा एक ही, और कुरान भी एक है ना, क्या अच्छा होता है कि होते अगर मुसलमान भी एक। ठीक है, वो तो कुरान ही एक, अब मतलब अब है ही नहीं, लोग कुरान से जुड़े हुए नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मुसलमान एक हो ही नहीं सकते। तो मुसलमानों को एक करने के लिए तो कुरान से जोड़ना पड़ेगा भाई, कुरान से तो जुड़े हुए नहीं है, तो अभी तो हम जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने हेलफोन से जुड़े हुए हैं, तो कुरान से जुड़ेंगे तो एक होंगे ना। बहरहाल, तो जल्ब मनफात से ये शेर भी याद आ गया, अल्लामा इकबाल वाला, तो जल्ब मनफात बाद में और दफ़ मुजरत पहले। ठीक है, तो इसी वजह से हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले अखलाक जमीमा और उनका इलाज, उसके बाद फिर अखलाक हमीदा की बात की है। ठीक है, तो इसमें हजरत जो है वो इसका आगाज जो है वो एक हदीस मुबारका से करते हैं। हम जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए इस इल्म को समझना आसान फरमा दीजिए, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर, और इसको समझना हमारे लिए मुश्किल ना बना दीजिए। इसको इस इल्म को हासिल करना, इस इल्म को अमल में लाना हमारे लिए मुश्किल ना बना दीजिए। ठीक है, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, और इसका जो हुसूल है ना वो हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, है ना, खैर के साथ इसको मुकम्मल फरमा दीजिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अता फरमा दीजिए इस इल्म की। वबिका नस्तईन, और ए अल्लाह तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं, तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। अगरचे कि मेहनत तो हमने अपने जो आपने हमें वसाइल दिए हैं उनसे हमने मेहनत करनी है, कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मदद के बगैर हम मकसद हासिल नहीं कर सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, है ना, हमारी अभी जहालत है इस इल्म के बारे में, हम जाहिल हैं या हमारा इल्म कम है। हमारा कम इल्म जो है वो ज्यादा इल्म से बदल जाए, ए अल्लाह ये आपके बगैर नहीं हो सकता। इल्ला बिल्ला, हौल का मतलब होता है तब्दीली। ठीक है, हम कोई अपने अंदर अच्छी तब्दीली नहीं ला सकते सिवाय आपकी मदद के। ठीक है, तो इन दुआओं के साथ रब्बना ज़िदना वाली भी दुआ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाइए। इसके साथ हम इस हदीस मुबारक को पढ़ के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन, ठीक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन से ये बात नकल है कि उन्होंने कहा, काला, उन्होंने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम, बेशक अल्लाह ताला नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, वला इला सुअरिकुम, और ना तुम्हारी सूरतों की तरफ। ठीक है, तो सूरत भी तो जिस्म के अंदर ही होती है, जिस्म से हटके तो हमारी सूरत नहीं होती, मुंह चेहरा। ठीक है, लेकिन नहीं, पहले जो है वो कुल को बता दिया कि भाई तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं, फिर तुम्हारे जिस्म के अंदर जो सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रोमिनेंट चीज है, सबसे ज्यादा वाजह चीज है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, वो तुम्हारी सूरत है। इसी वजह से हिजाब का जो हुक्म है ना वो सूरत को छुपाने का है, सूरत को छुपाना, है ना, जिसको लोग निकाब कहते हैं, या इंडिया में उसको लोग नोज पीस कहते हैं, नोज पीस, पता नहीं नाक पे कोई चीज लटका दी। ठीक है, तो बहरहाल जो भी कहें आप, आपकी मर्जी है, लेकिन चेहरे को छुपाना ये हिजाब का हुक्म है। ठीक है, कल जो है आज इस बच्चों के लिए कुछ किताब देख रहा था कि उनको रीडिंग के लिए कहें, तो वो काफिरों की छापी हुई ना, मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में काफिरों की छापी हुई किताब थी। ठीक है, तो इब्ने हैतम जिन्होंने जो है वो ये कैमरा वगैरह टाइप की, ये सारी आंख के ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च थी, तो उस किताब में मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने तस्वीरें वगैरह डाली हुई थी, तो एक तस्वीर में देखा कि मुसलमान साइंटिस्ट जो है ना वो किताबें पढ़ रहे हैं, और उनके पीछे जो है ना वो मुस्लिम साइंटिस्ट औरतें खड़ी हुई हैं, है ना, वो औरतें जो है वो पूरा, उन्होंने ऊपर से तो हिजाब विजाब पहना हुआ है लेकिन चेहरा जो है वो सबका खुला हुआ है, ये उनकी ड्राइंग थी बेसिकली। ठीक है, तो अल्लाह रहम करे भाई। ठीक है, तो ये जाहिर है, ये जब इस्लाम को भी प्रेजेंट करते हैं ना काफिर लोग, तो वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं ताकि मुसलमान भी जो है वो इन्हीं के रास्ते पे चल पड़े। ठीक है, औरतें जो है वो बेपर्दा हो जाएं, और फिर शैतान जो है वो आकर के मजे से इनके साथ गुनाह करवाए। ठीक है, तो बहरहाल, तो अल्लाह ताला जो है ना, तो इस हदीस को पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। क्या मतलब, अल्लाह ताला के क्या विजन नहीं है कि हमारे जिस्मों और सूरतों को देख सके? नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा अहमियत तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों की नहीं है, ज्यादा अहमियत इनकी नहीं है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, और लेकिन वो देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ और तुम्हारे आमाल की तरफ। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, क्योंकि दिल जो है ना असल में जो मोहब्बत और नफरत की कैफियत होती है ये तो दिल के अंदर होती है, और आमाल, ये आमाल जो है वो उस मोहब्बत और नफरत की कैफियत की बुनियाद पर ही होते हैं। जिस चीज से मोहब्बत होती है हम उसको उसके करीब होने के लिए आमाल करते हैं, और जिस चीज से नफरत होती है हम उससे दूर होने के लिए आमाल करते हैं, या उसको अपने से दूर करने के लिए आमाल करते हैं। ठीक है, तो कुलूब और आमाल का भी गोया कि वैसा ही रिश्ता है कि जैसे कि अजसाम और सूरत का रिश्ता है तो सूरत भी अजसाम का हिस्सा, ठीक है, लेकिन अलग से सूरत को जिक्र कर दिया क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट होती है। उसी तरीके से जो आमाल होते हैं वो कुलूब की कैफियत ही की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन पहले कुलूब का तस्करा कर दिया, फिर अमाल का भी तस्करा कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला के नजदीक इस हदीस का मफहूम क्या हुआ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा कल्ब और तुम्हारे अमाल है, बाकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जो है वो तुम्हारे अजसाम और कुलूब की और सूरतों की भी है कि तुमने अपनी जिस्म को जो है वो क्या किया हुआ है, कैसा किया हुआ है अपने जिस्म को, उसके ऊपर सुन्नत लिबास है कि उसके ऊपर जो है वो काफिरों वाला लिबास है, अल्लाह ताला ये देखते हैं। तुम्हारी चेहरा चेहरा जो है वो कैसा है, अगर मर्द हो तो तुमने मेरे नबी की सुन्नत जो है वो चेहरे के ऊपर लगाई हुई कि नहीं लगाई हुई, अल्लाह ताला इसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोर्स इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत है, ठीक है। अगर औरत हो तो तुमने अपने चेहरे के ऊपर वैसा कोई काम तो नहीं किया हुआ, यानी गैर महरम के सामने छुपाना था तो तुमने छुपाया हुआ चेहरा कि नहीं छुपाया हुआ, ठीक है। वो आईब्रोज को बनाना है, वो एक है ना आईब्रोज बनाना जो है वो औरतों के लिए नाजायज है, उसकी बड़ी तफसील है वो, मैं ये उसमें मैंने नहीं जाना, लेकिन औरतों के चेहरे के ऊपर भी अल्लाह ताला देखते हैं कि इसने जो है वो जो चीज मैंने अपनी दीन के अंदर जायज करी थी वो करी हुई है चेहरे पर, ठीक है, जो नहीं जायज थी वो इसने चेहरे पर करी हुई है, इसको सजा होगी, ठीक है। और सजा एक वाकया भी किसी का लिखा था पिछले दिनों ग्रुप के ऊपर शेयर किया था, ठीक है। तो इसका तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और सूरतों की तरफ नहीं देखते बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे कुलूब और आमाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। किसी को इसकी समझ में कमी हो तो आप पूछ लीजिए, बात समझ में आ गई पूरी, ठीक है। अजसाम, सूरतें और कुलूब और आमाल, ठीक है। अच्छा, मतलब यह है कि अल्लाह ताला ऐसे आमाल को कबूल नहीं फरमा। अब ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो अल्फाज हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं कि मतलब यह है कि अल्लाह ताला ऐसे आमाल को कबूल नहीं फरमाते जो बज़ाहिर अच्छे मालूम हो मगर हकीकत में इखलास और तवज्जो कल्ब से खाली हो, कल्ब की तवज्जो ना हो उसके अंदर अल्लाह की तरफ बल्कि दुनिया की तरफ तवज्जो है और बस आमाल कर रहे हैं। मसलन कोई शख्स बज़ाहिर इबादत में मशगूल है मगर उसके दिल में गफलत छाई हुई है और इस बात की तरफ तवज्जो नहीं कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा है या कोई और काम कर रहा है तो इबादत मकबूल नहीं होगी, ठीक है। मकबूल नहीं होगी यानी अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना वो इबादत वो दर्जा नहीं पाएगी जैसा कि उसको पाना चाहिए, ठीक है। मकबूल कहते हैं ना कोई बहुत ही ज्यादा पसंदीदा हो जाए उसके लिए मकबूल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझने के एक कबूलियत और मकबूलियत इस इन दोनों अल्फाज में एक एक लिहा एक एक जहत से देखा जाए, एक एंगल से देखा जाए तो फर्क यह है कि आपको किसी ने कोई चीज ला करके दी, आपने ले ली उससे, आपने ले ली लेकिन आपने पसंद नहीं किया उसको, बस ले के रख ली क्योंकि आप उसको वापस नहीं करना चाहते, उसका दिल टूट जाएगा या जो है वो कोई नाराजगी हो जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, आपने ले के रख ली अपने पास, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जी कबूल हो गई, रद्द नहीं करी आपने, वापस नहीं कर दी उसको। एक होती है मकबूलियत, मकबूलियत का मतलब कि आप यानी यहाँ पे लफ्ज मकबूलियत जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी आपको पसंद भी आ गई, आपको खुशी भी हुई इससे और आपका दिल खुश हो गया उस चीज को देख करके, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसकी इबादत मकबूल नहीं होगी अगरचे कि इस सूरत में भी फर्ज जिम्मे से साकित हो जाएगा, यानी रद्द नहीं किया अल्लाह ताला ने, रख लिया अपने पास, ठीक है, मगर मुकम्मल सवाब से महरूम रहेगा, ठीक है। गफलत की नमाज पढ़ रहा है तो मुकम्मल सवाब से महरूम रहेगा, इसलिए कि दिल जिस्म का बादशाह है, जब तक उसकी इस्लाह नहीं होगी उस वक्त तक दूसरे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, ठीक है। दिल बादशाह है और जिस्म के ऊपर बादशाह का हुक्म चलता है, तो दिल अगर अच्छा है तो फिर वो अच्छा हुक्म चलाएगा और अगर बुरा है तो वो बुरा हुक्म चलाएगा, ठीक है। लोग आजकल इसमें बहुत बड़ी कोताही करते हैं, जाहिरी अमाल थोड़े बहुत करते हैं और उनका इल्म भी किसी हद तक हासिल करते हैं मगर बातनी इस्लाह और कल्ब की दुरुस्तगी की कुछ भी फिक्र नहीं करते, ठीक है। जाहिरी अमाल का इल्म हासिल कर लेते हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं वुजू कैसे करना है, ठीक है, नमाज कैसे पढ़नी है इसका तो। अच्छा अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इस वक्त तो हमारे जो हालात हैं, हम इवन जाहिरी अमाल का भी इल्म जो है ना वो सही से हासिल नहीं कर रहे, ठीक है। इसी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने दोबारा से रिमाइंड एज अ रिमाइंडर के इबादत के अंदर सबसे अहम इबादत जो है वो नमाज है, फिर उसके बाद जो है वो रोजा है, ठीक है, जकात तो है लेकिन यहाँ पे फिर जकात की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जकात के लिए आपको पाक फिजिकल पाक नहीं होना होता, फिजिकली पाक नहीं होना होता, रोजे के लिए आपको फिजिकली पाक होना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो काबतुल्ला का तवाफ, ठीक है, ये भी जो है वो सिर्फ नजासत से पाकीजगी की हालत में ही किया जा सकता है। औरतों के मखसूस मसाइल की बात हो रही है यहाँ पे इस वक्त, उसकी उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो नमाज जो है वो आप हैज नफास इस्तहाज़ा से पाकी के बगैर नमाज नहीं होती, हैज नफास और इस्तहाज़ा से पाकी के बगैर रोजा नहीं होता, और इसके बगैर जो है वो तवाफ नहीं हो सकता। सही तो कर सकते हैं इसके बगैर, लेकिन तवाफ नहीं कर सकते, और फिर जो है वो अज़वाजी ताल्लुकात भी नहीं कर सकते। तो ये चार बहुत अहम तरीन चीज़ें जो है वो हैज नफास इस्तहाज़ा से पाकी के लिए, यानी पाकी की शर्त के बगैर नहीं हो सकते। अब इस वक्त जो हालात आपके सामने आए हैं, हमने बाकायदा आपके मौलिमा का जो है वो आर्टिकल भी शेयर किया है, जिससे कि आपके बहुत सारी फाइंडिंग से पता चला होगा, वो ये है कि औरतों के अंदर यही वाला इल्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है या गलत है। कोई उसको सही समझ रहा था अपने इल्म को, लेकिन वो भी गलत निकला, ठीक है। तो अभी एक अनाउंस होने वाला है इंशाल्लाह, एक दोबारा से एक कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल का, तो उसमें जो है ना जो लोग पहले नहीं कर चुके हैं तो वो उस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यही हैज नफाज इस्तहाज़ा के मसाइल का बेसिक लेवल का कोर्स दोबारा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, हमारे यहाँ नवम्बर में, मिड नवम्बर के अंदर ये शुरू होगा। तो हजरत तो फरमाते हैं अच्छा गुमान रखते हुए हमसे कि जाहिरी अमाल तो थोड़े बहुत करते हैं, उनका इल्म भी किसी हद तक हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका इल्म भी जो है वो हमारा सही नहीं होता, नाकस होता है। मगर बातनी इसलाह और कल्ब की दुरुस्तगी की कुछ भी फिक्र नहीं करते, ठीक है। ये समझते हैं कि अमराज बातनिया, रिया, कीना, हसद वगैरह का इलाज कोई जरूरी नहीं है, फकत जाहिरी अमाल ही निजात के लिए काफी हैं, हालांकि असल मकसूद इस्लाह कल्ब है, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना उससे पता चलेगा कि भाई असल मकसूद क्या है। तो वो तो है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम व इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमालिकुम, ठीक है। तो भाई असल चीज तो वो ही ना जिसकी तरफ परवरदिगार ने देखना है, तो उसकी इस्लाह की तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते, जैसे कि मजकूरा हदीस से साफ मालूम होता है। और अमाल अमाले जाहिरी जरिया हैं कल्ब के दुरुस्त होने का, ठीक है, यानी अमाले जाहिरी जो हमारे होते हैं ना तो ये भी कल्ब की दुरुस्ती का सबब बन जाते हैं, ठीक है, ये जरिया हैं कल्ब के दुरुस्त होने का। और जाहिर और बातिन में कुछ ऐसा कुदरती ताल्लुक है कि बगैर जाहिरी हालत दुरुस्त दुरुस्त किए बातिनी हालत दुरुस्त नहीं होती, ठीक है। यानी ये जो जाहिर और बातिन, जो अपेरेंट है और जो हिडन है हमारे अंदर, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। वो कैसी कनेक्शन है, वो हजरत फरमा रहे हैं कि बगैर जाहिरी हालत दुरुस्त किए बातनी हालत दुरुस्त नहीं होती, यानी जाहिरी अहवाल का असर पड़ता है इंसान के बातिन के ऊपर, और जब तक जाहिरी अमाल पर दवाम हमेशगी और पाबंदी ना हो इस्लाह बातिन दायम नहीं रहती, ठीक है। और जब बातनी हालत दुरुस्त हो जाती है तो जाहिरी अमाल खूब अच्छी तरह अदा होते, ठीक है ना। क्या जबरदस्त बात करी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, 100% हकीमी बात करी है हजरत ने, हिकमत वाली बात भी करी है, और ऐसी बात करी है कि आम इंसान के लिए ये बात करना मुमकिन नहीं, ये कोई डॉक्टर लेवल का बंदा ही ऐसी बात कर सकता है। ठीक है। क्यों? इसलिए कि जब इस हदीस को पढ़ते हैं ना, तो इस हदीस से ऐसा लगता है कि अच्छा, पहले तो कल्ब दुरुस्त होना चाहिए, अंदर से दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है वो बाहर के मामला भी दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाहर के ऊपर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर के ऊपर मेहनत करो, ठीक है ना, कल्ब को अच्छा करो, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करो, ठीक है, और जो है वो कुछ और इस किस्म के जो भी कल्ब को दुरुस्त करने के लिए चीजें बताई जाती हैं तो वो करते रहो, उनका असर जो है ना वो फिर तुम्हारे जाहिर के ऊपर भी होना शुरू हो जाएगा। अभी जाहिर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जाहिर जो है ना वो तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज के ऊपर मेहनत करनी चाहिए ना भाई। प्राइमरी चीज क्या है? कल्ब, ठीक है, तो जाहिर को छोड़ो, जाहिर को रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जाहिर को छोड़ दें और सिर्फ बातिन के ऊपर मेहनत करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि असल हकीकत यह है कि जो तब्दीली है ना, वो शुरू जो है वो तो जाहिर से होती है, बड़ी तब्दीली जो है ना वो पहले जाहिर के ऊपर आती है और फिर जो है ना वो बातिन के अंदर आती है, ठीक है। बातिन के अंदर ज्यादा बड़ी तब्दीली बाद में आती है, फिर उसके बाद जो है ना बातिन के अंदर ये तब्दीली जो है वो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और इसका असर जो है ना वो जाहिर के ऊपर भी अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। यानी एक समझने, हैंड इन हैंड कहते हैं ना, दोनों हाथों का आपस में ताल्लुक है, हैंड इन हैंड, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते कि भाई सीधे हाथ को बस आपने अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया और बाएं हाथ को आपने बिल्कुल अलग इस्तेमाल कर लिया और दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं है, ठीक है ना। सीधा हाथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है और बाया हाथ जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह सीधा हाथ और उल्टा हाथ जो है ना ये एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, आप किसी चीज को पकड़ते हैं दोनों हाथों से पकड़ते हैं, ठीक है, एक हाथ से खाली काम नहीं हो सकता, दोनों हाथों से, जिसको उर्दू में ये भी कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, आप एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजा सकते, दूसरे काम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंसान की तब्दीली जो है ना ये सिर्फ ना तो सिर्फ जाहिर से आती है ना सिर्फ बातिन से आती है, बल्कि दोनों का आपस में एक रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल इब्तिदा कहां से होती है, ये चले आप बता दें, बिल्कुल पहली इब्तिदा कहां से होती है, वेयर डज इट ऑल बिगिन, ठीक है, ये जाहिर से इब्तिदा होती है कि बातिन से इब्तिदा होती है, इब्तिदा कहां से होती है? जी 2 मिनट हैं इस क्लास में हमारे पास, बिल्कुल इब्तिदा कहां से होती है? जाहिर से तो कोई इब्तिदा नहीं होती, जाहिर तो हम पढ़ ही नहीं रहे इस वक्त, ठीक है, जाहिर है ना, जी से जो है वो जी का साउंड निकलता है, वाह का, ठीक है, तो जाहिर से इब्तिदा होती है, नहीं, गलत, ठीक है ना, जाहिर से इब्तिदा नहीं होती, बिल्कुल इब्तिदा जो है ये तो बातिन से होती है, ठीक है, बिल्कुल इब्तिदा, सही है, सोच से, आपने कुछ सोचा ना कि भाई मुझे जो है वो दीनदार बनना चाहिए, दीन जो है वो अच्छा, दीन भी कोई अहमियत की काबिल चीज है, पहले आप ऐसे नहीं सोचते थे, आप जो है वो आप एक दीन दुनियादार घराने के अंदर पैदा हुए, दुनियादार जो है वो आपने लोगों के साथ जो है वो उठना बैठना हुआ, दीन के बारे में कोई फिक्र नहीं, आखिरत के बारे में कोई फिक्र नहीं, ठीक है ना, फिर आप जो है वो स्कूल चले गए, स्कूल के अंदर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको आइंस्टाइन पढ़ा रहे हैं और जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं और ये सब पढ़ा रहे हैं, है ना, आपका कभी फिक्र ही नहीं हो रही अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर कहीं आपका गुजर हो गया, कहीं आपने कोई किताब पढ़ ली, कहीं आपने किसी की बात सुन ली, आपके दिल में एक सोच पैदा हुई, नहीं यार मेरे मकसद जिंदगी जो है ये सिर्फ ये कोई थोड़ी है, सिर्फ दुनिया कोई थोड़ी है, दीन भी है, दीन ही नहीं है, अभी आपके दिन में सिर्फ सोच पैदा हुई है, दीन भी है मेरा मकसद जिंदगी, जिसको हम कहते हैं दीन दुनिया साथ साथ, है ना, दीन दुनिया साथ साथ, दीन दुनिया भाई भाई अमेरिका ने आग लगाई है, शिया सुन्नी भाई भाई अमेरिका ने आग लगाई, ये बचपन में हम नारे वारे सुनते थे, तो दीन भी है, तो जब आपके जहन में ये सोच पैदा हुई तो फिर आपने जो है वो कहा अच्छा मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे जो है ना कुछ नमाज भी जो है वो सीखनी चाहिए, तहारत भी सीखनी चाहिए, मुझे जो है वो कुछ और भी काम करने चाहिए, दीन वाले काम भी करने चाहिए, तो आपने फिर जो है ना वो कुछ दीन के काम भी करने शुरू कर दिए, तो इब्तिदा कहाँ से हुई थी? सोच से। सोच कहाँ की चीज है? अंदर की चीज है, बातिन की चीज है, ठीक है, और इसका असर क्या हुआ कि आपने बाहर से फिर कुछ चीजें पढ़नी शुरू करें, कुछ चीजें उसी चीज सीखनी शुरू करें। लड़के थे तो लड़के साहब ने जो है वो थोड़े से जो है वो दाढ़ी के बाल उगाने शुरू कर दिया, अभी मौलवियों जैसी शक्ल बन होनी चाहिए, मेरी नबी अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो बाहर से जो है ना फिर तब्दीलियां, यानी एक एक ट्रिगर हो गया, एक चीज शुरू हो गई, अंदर की सोच की बुनियाद पर बाहर की तब्दीली शुरू हो गई। अब वो बाहर की तब्दीली जो है ना, फिर क्या होता है कि ये आपने जो अंदर से एक इंजन स्टार्ट कर दिया ना, अब ये इंजन जो है ना वो बाहर की तब्दीली को चला रहा है। अब जाहिर है आपने इल्म हासिल करना शुरू किया, तो भाई इल्म तो एक प्रोसेस है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा चीजें समझ पता लगती जाएंगी, जैसे जैसे ज्यादा चीजें पता लगती जाएंगी वैसे वैसे तब्दीली जो है वो ज्यादा आती जाएगी। तो बाहर की तब्दीली जो है ना फिर ज्यादा आनी शुरू होगी, ज्यादा आनी शुरू होगी, ज्यादा आनी शुरू होगी, है ना। बड़ी दाढ़ी जो है वो पहले छोटी थी, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर और बड़ी हुई, माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, ठीक है। और जो है वो पहले आपने जो है वो पहले ढीले कपड़े पहनने शुरू किए, टाइट कपड़े पहले पहनती थी, अब ढीले कपड़े पहनने शुरू किए, फिर उसके बाद जो है ना पहले दुपट्टा नहीं लेती थी, अब दुपट्टा भी लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक दिन पता चला कि भाई सतर क्या होता है, औरत का सतर है ना, अच्छा सतर भी होता है, ओहो ये क्या चीज होती है भाई। तो आपने जो है ना फिर जो सतर पता चला आपको, तो सतर को ढांकना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। अभी सतर नहीं ढांकती थी, अभी सिर्फ ढीले कपड़े थोड़े से पहने थे, है ना, हाथ भी खुला होता था और गला भी खुला होता था और सर तो पूरा ही खुला होता था। फिर उसके बाद जो है ना दुपट्टा लेना शुरू किया, दुपट्टा लेने के बाद जो है ना फिर पता चला, ओ सर के बाल ये भी सतर में होते हैं, ये सतर है, इसको तो फर्ज था इसको ढापना। फिर उसके बाद आपने स्कार्फ भी पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो आपने स्कार्फ पहले तो बाहर पहनती थी, घर में नहीं पहनती थी, गैर महरम जो घर में होते थे उनके सामने स्कार्फ नहीं पहनती थी, सिर्फ बाहर जाके स्कार्फ पहनती थी। फिर आपने जो है वो घर में जो नामहरम रहते हैं उनके सामने भी स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। ये सब तब्दीलियां क्या हो रही हैं, ये जाहिरी तब्दीलियां हो रही हैं, ठीक है। बातिन में भी थोड़ी थोड़ी तब्दीली हो रही है, लेकिन जाहिर में ज्यादा तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है ना, लेकिन बातिन में छोटी छोटी सी तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है ना। अब जो है ना ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, और जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमान है ना, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बेसिकली जाहिरी तब्दीली जिन लोगों में आ गई है काफी सारी, ठीक है ना, उन लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि भाई जिस तरह आपने जाहिरी तब्दीलियों के लिए इतना इल्म हासिल किया है ना और इतनी मेहनतें करी है ना, तो उसी तरीके से उतनी मेहनत कम अज कम आप जो है वो बातनी तब्दीली के लिए भी करें। बातनी तब्दीली आपके अंदर बहुत स्लो चल रही है, जाहिरी तब्दीली तो माशाल्लाह तेज चल गई, बातनी तब्दीली को भी तेज करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए उसकी अहमियत बयान कर रहे हैं कि भैया ठीक है ना, उसका भी इल्म हासिल करें, उसके बारे में भी सोचें, उसके जो बुराइयां उनका भी इलाज जो है वो कैसे करते हैं वो भी करें। अच्छा आगे फरमाते हैं कि खूब समझ लेना चाहिए कि जिस तरह आमाले जाहिरा सोम व सलात वगैरह का अदा करना और उनके अदा करने का तरीका जानना वाजिब है, ठीक है, सोम सलात, ठीक, इसी तरह कल्ब को बातनी अमराज रिया, क्या है बातनी अमराज, रूहानी अमराज भी जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये भी हम लाजमी समझ गए, रूहानी अमराज इज इक्वल टू बातनी अमराज, ये एक चीज है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ आमतौर पर रूहानी बीमार यानी रूहानी इलाज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सी वाली रूहानी, किस चीज को हम रूहानी बीमारी कह के उसका इलाज कर रहे होते हैं, जादू टोना, ठीक है ना, जादू हो गया, सिफली आमाल हो गए, नजर लग गई, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि जी ये रूहानी तौर पर बीमार हो गया, और फिर उसका इलाज करते हैं किसी आमिर के पास जाकर के या कोई वजीफा वगैरह पढ़ करके उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं रूहानी इलाज, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। रूहानी बीमारी जो होती है ना वो जादू से नहीं होती, रूहानी बीमारी नजर लगने से नहीं होती, ठीक है, रूहानी बीमारी तो बिल्कुल एक अलग चीज है, ठीक है, वो है रिया नमूद यानी नामो नमूद की जो एक तलब होती है इंसान के अंदर, कीना हसद बुग़्ज़ वगैरह, ये होते हैं रूहानी अमराज, और रूहानी इलाज जो है वो इन चीजों को दूर करने का नाम, ठीक है। वजीफे और झाड़ फूंक और मिर्ची जलाना और फलानी चीज करना वो रूहानी इलाज नहीं होता, ठीक है, उसको अमलियात कह देते हैं, अमलियात कह देते हैं उसको, वो रूहानी इलाज नहीं होता। ठीक है ना, इस बात को बिल्कुल क्लियर करें अपने घर में। तो फरमाते हैं कि कीना, हसद और बोहत वगैरह से साफ रखना और इन मोहलिक अमराज से कल्ब की सफाई का तरीका जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां, रूहानी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इंसान को रूहानी तौर पर हलाक कर देती हैं। और जब कोई रूहानी तौर पर हलाक हो जाता है ना, तो फिर वो जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक नहीं रहता, जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक नहीं रहता। तो जब जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो फिर किधर दाखिल होगा? फिर उसके बाद जहन्नम में रह जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इन रूहानी अंदाज का इलाज लाजिम है। यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं, माशाल्लाह एक पेज हमने पूरा पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली क्लास से पहले हम चंद मिनटों की ब्रेक ले रहे हैं।